ओम शांति। हम आप सभी भगवान के बच्चे अति श्रेष्ठ बच्चे हैं। हम आप सब आत्माओं का एक ही लक्ष्य है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनना। निराकार स्वरूप में परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है। साकार सृष्टि पर देवताएं श्रेष्ठ हैं। संगम युग में ब्रह्मा बाबा श्रेष्ठ हैं। तो इन तीनों के समान बनने का लक्ष्य है। अगर पूछा जाए तो यही कहते हैं कि मुझ आत्मा को बाप समान बनना है। तो समान में ये तीनों आते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप ही नारायण बनेगा, जो सर्वश्रेष्ठ पद है। तो इन तीनों के समान कैसे बने, वो शिव बाबा आकर ब्रह्मा मुख के द्वारा, मुरलियों के द्वारा बता रहा है। तो इन तीनों जैसा श्रेष्ठ बनने के लिए बाबा ने हम आप सब आत्माओं को चार सब्जेक्ट्स दिए, ज्ञान योग धारणा सेवा। इन चारों सब्जेक्ट्स में आत्मा स्वयं को संपन्न बनाकर समान बन सकती है, लेकिन चारों सब्जेक्ट्स में मुख्य सब्जेक्ट है याद की यात्रा, निरंतर योगी। क्यों मुख्य सब्जेक्ट्स ये है? क्योंकि चाहे ज्ञान है, चाहे गुणों की धारणा है, चाहे विकर्म विनाश करके आत्मा को पावन दिव्य बनाना है, तीनों का आधार योग ही है। क्योंकि योग के आधार से आत्मा में दिव्य शक्तियां आती हैं। जिस दिव्य शक्तियों के आधार से आत्मा ज्ञान को या गुणों को धारण कर सकती है। ज्ञान तो कुछ पहले से भी था, लेकिन अभी बाबा का ज्ञान मिला, लेकिन उस ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए आत्मा में विल पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, दिव्य गुणों को धारण करने के लिए शक्ति चाहिए। वो मिलती है सर्वशक्तिवान परमात्मा की याद से। तो याद मुख्य सब्जेक्ट है। याद के आधार से आत्मा की जो खाद निकलती है, आत्मा दिव्य बनती जाती है। उस दिव्यता के कारण आत्मा से सेवा स्वतः होती है। जैसे आपने देखा है, आपका ही यादगार है, मूर्तियां दिव्य हैं। मूर्ति कहीं उठ करके नहीं जाती है, मूर्ति के पास अपने आप जो चाहिए लोग लेने के लिए आते। अगर हम आप सब आत्माएं ऐसे दिव्य बन जाएं, तो हमको भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद ही आपका मनसा इतना पावरफुल होगा, जो अभी इसी मुरली में बाबा ने कहा कि एक स्थान पर बैठे आप सकास दो, वाइब्रेशंस भेजो, दूसरों के दुख दूर करो। अब दुख दूर, जैसे मूर्ति एक स्थान पर बैठे हुए भक्तों के दुख दूर करती है, वो मूर्ति तो आपका ही यादगार है। तो जरूर आप आत्माएं एक स्थान पर बैठ करके अपने भक्तों का या विश्व की सर्व आत्माओं का दुख दूर किया है, तब तो यादगार बना है। तो मुख्य सब्जेक्ट है याद की यात्रा। हर एक बाबा के बच्चे का यही लक्ष्य है कि हम आत्मा निरंतर योगी बन जाए। सब चाहते हैं बनना, और पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, अपने विधि प्रमाण, अपने शक्ति प्रमाण पुरुषार्थ भी कर रहे लेकिन पुरुषार्थ करते हुए निरंतर योगी क्यों नहीं बन पा रहे हैं, या बाबा योग के द्वारा जो सिद्धियां बता रहा है, सिद्धि अर्थात सफलता, वो क्यों नहीं आत्मा को प्राप्त हो रही है? इसका कारण है योग करते हैं लेकिन यथार्थ विधि से नहीं करते। यथार्थ विधि से योग न करने के कारण आप आत्मा जो चाहते हो वो हम सब आत्माओं को मिल नहीं पाता है, उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जैसे आपको क्लास में आना था, आप अपने कमरे से निकल करके बाहर आए कि क्लास में जाऊंगा। यथार्थ विधि है आने का कि सीधे रास्ते पर चलो, जहां जैसा मोड़ हो उसी प्रकार से मुड़ करके स्थान पर पहुंचो, ये यथार्थ विधि है। अब मान लो आप कमरे से बाहर आए क्लास में आने के लिए, लेकिन आप सीधे पैर न चलकर उल्टे पैर चलो तो क्लास में आओगे या कमरे में ही वापस जाओगे? चले जरूर, लेकिन यथार्थ विधि से नहीं चले। ऐसे आप वहां से आगे आए, मींस चले थोड़ी दूर, तो थोड़ी दूर आप सीधे पैर से चले और थोड़ी दूर चलने के बाद फिर उल्टे पैर से चलो, तो आगे बढ़ोगे या पीछे पहुंचोगे? जहां से चले थे वहीं पहुंच जाएंगे, या जिस रास्ते पर मुड़ना था वहां न मुड़कर दूसरे रास्ते से मुड़ गए तो भी आप क्लास में नहीं पहुंच सकते थे। तो योग करने की जो यथार्थ विधि है, उस यथार्थ विधि के प्रमाण योग नहीं किया तो मंजिल प्राप्त नहीं हो सकती है। जैसे आप आए बैठे योग करने के लिए, योग की सबसे पहले यथार्थ विधि है कि मैं आत्मा हूं, पहली विधि तो ये है। अब अगर आप योग करने बैठे और मैं आत्मा हूं यह स्थिति नहीं बना पाए तो ये तो जैसे कमरे से निकले ही नहीं हो। अगर मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूं, ये बिंदु स्वरूप की स्थिति नहीं बनी, इस कमरे से स्वयं को बाहर नहीं निकाला तो ऊपर कैसे चलोगे? शरीर तो जाएगा नहीं, बाबा तो ऊपर है ना। फिर कई बच्चे एक मिनट के लिए अशरीरी होते हैं, शरीर से थोड़ा सा न्यारे बनते हैं, फिर तुरंत देह भान में आ जाते हैं, फिर वहीं वापस आ गए, उल्टा चले जाते। कई बच्चे अभ्यास करके सूक्ष्म वतन तक अपने को ले जाते हैं, फिर वहां तक पहुंचे तब तक फिर कोई दें की दुनिया की बातें, काम धंधा लौकिक संबंधी कुछ न कुछ याद आया, फिर वापस आ गए। और कई बच्चे अपनी मत से योग की विधि का प्रयोग करते, जैसे बाबा ने मुरली में कहा है वो विधि न लेकर अपने बुद्धि के प्रमाण करते हैं। इसको कहा जाता यथार्थ मोड़ पर टर्न ना लेना। तो महत्व तो है यथार्थ विधि, महत्व तो योग का नहीं है। योग का महत्व तो तब है जब आप यथार्थ विधि से योग कर रहे हैं तब, नहीं तो 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा बैठो, अगर यथार्थ विधि नहीं है तो प्राप्ति नहीं होगी। अब यथार्थ विधि का आधार क्या है? एक है आधार, एक है विधि, कि मैं आत्मा यथार्थ विधि पर चल सकूं, उसका आधार है 3। तीन बातें आधार रूप से है। अगर उन तीन बातों के अटेंशन में रहकर करेंगे तो यथार्थ का आधार पक्का हो जाएगा। जैसे बिल्डिंग का मुख्य आधार फाउंडेशन पड़ता है, ऐसे सबसे पहले यथार्थ मार्ग पर चल पड़े उसके लिए तीन बातें। पहला है अपने दिल की लगन चाहिए कि मुझे भगवान के श्रीमत पर चलाना ही है। जैसे बाबा ने कहा है, मुझ आत्मा को उसी डायरेक्शन प्रमाण स्वयं को निरंतर योगी बनाना है। ये अंदर के दिल की लगन हो। दूसरी बात है कि यह डायरेक्शन देने वाला कौन है उसकी यथार्थ पहचान हो। यथार्थ पहचान हो। और तीसरी बात है परमात्मा से अविनाशी दिल का स्नेह हो। अविनाशी दिल का स्नेह हो। यह तीन आधार है। पहली बात है कि दिल की लगन हो। आप अभी यह संकल्प करके देखो जो बता रहे हैं कि मुझे आत्मा को बाबा के श्रीमत पर पूर्ण रूपेण चलना ही है। ये अंदर से दृढ़ता लाकर देखो रिजल्ट क्या होगी। अभी करके देखो आपके अंदर जो आत्मा में शक्तियां मर्ज हैं वो शक्तियां इमर्ज होने लगेगी। ये आत्मा जो भी यहां बैठी हैं ब्राह्मण आत्माएं, ये साधारण आत्माएं नहीं हैं। इन आत्माओं ने कल्प पहले भी देव पद की प्राप्ति की है। इन आत्माओं में देवताईपन के संस्कार भरे हैं, शक्तियां भरी हैं। सिर्फ द्वापर से जो देह भान में रहे उसके कारण वो मर्ज पड़ी। अभी आप आत्मक स्वरूप में आकर लगन प्रज्वलित करो, देखो वही शक्तियां इमर्ज होने लगेंगी। और जितनी वो शक्तियां आत्मा से इमर्ज होने लगेंगी उतना आप देखो पुरुषार्थ कैसे आगे बढ़ता है। तो पहली बात चाहिए लगन, काम करने की, मतलब बाबा के श्रीमत पर चलने की आंतरिक लगन हो कि मुझे ये करना है। तो लगन वैसे भी अग्नि का काम करती है, सारे विघ्न परिस्थितियां भस्म करती जाएगी। बाबा के इस शब्द को याद करो, अगर आप बाबा के श्रीमत पर चलोगे तो आपका जिम्मेदार बाबा है, सारी जिम्मेदारी वो ले लेगा। तो पहली बात लगन, और दूसरी बात कि मुझे आत्मा को यह डायरेक्शन देने वाला है कौन। हम आभल बाबा बाबा करते हैं, लेकिन बाबा है कौन ये अभी हम बुद्धि में नहीं लाते। सोचो थोड़ा, अगर आप बाबा को यथार्थ पहचान जाओ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान की आज्ञा की अवज्ञा कर सको, हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर भगवान के आज्ञा की अवज्ञा हो रही है, जैसे बाबा कहता है हम आत्माएं नहीं कर रही हैं, तो सिद्ध है कि अभी भगवान को पहचाना नहीं है कि ये डायरेक्शन दे कौन रहा है। अगर यह बात समझ में आ जाए कि ये डायरेक्शन किसने दिया है, तो आप आत्मा में बहुत शक्ति आ जाएगी, बल आ जाएगा वो करने के लिए। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। साकार बाबा के समय माउंट आबू में जो ब्रिज कोठी है, जहां शुरू में हैदराबाद से आकर के रहे थे, सिंध पाकिस्तान से आकर, तो बाबा सुबह क्लास के बाद ऐसे कोठी से बाहर आकर खड़े थे, एक ऐसे चबूतरा था, तो वहां जंगल चारों तरफ है, तो एक सांप बाबा के पैर पे चढ़ गया, चारों तरफ जंगल ही है। तो बाबा ने इधर उधर देखा तो एक बलदेव भाई था वहां, जो इसका प्रगति पथ प्रदर्शक का मुख्य भाई है, तो उसको बाबा ने बुलाया, बच्चे इधर आओ। आया तो बाबा ने कहा, बच्चे देखो ये पैर पर ये बच्चा चढ़ा हुआ है, सांप को बच्चा कहा बाबा ने, और इस बच्चे को पकड़ के ले जाओ, इसको दूध पिला दो और जंगल में छोड़ दो। अब जिंदे सांप को पकड़ना कोई खेल है क्या? वो बेचारा तो थोड़ा सोचने लगा, कपड़ा ले आए या और कुछ ले आए पकड़ने के लिए। तो बाबा उसके संकल्पों को पहचान लिया और बाबा ने अथॉरिटी से बोला, बलदेव कौन कह रहा है? तो जब बाबा अथॉरिटी से बोला कि कौन कह रहा है, अरे उसको तो स्मृति आई, भगवान बोल रहा है, तो सांप क्या करेगा। बड़े आराम से सांप को पकड़ा हाथ से, दूध पिला के छोड़ आया। अब ये ताकत कहां से आई? जब पहचाना कि कौन बोल रहा है। अगर हम आप सबसे श्रीमत की अवज्ञा हो रही है, तो एक ही कारण है, अभी ये नहीं समझ रहे कि कौन श्रीमत दे रहा है। सर्वशक्तिवान परमात्मा दे रहा है, तो यथार्थ विधि की पहचान आवश्यक है। जिसको बाबा कहता, मैं जो हूं जैसा हूं और तुम जो हो जैसे हो, वैसा समझकर मुझ बाप को याद करो। और तीसरा है स्नेह। 18 जनवरी की मुरली में आप लोगों ने सुना होगा, हो सकता कहीं ना पहुंची हो, सारी मुरली स्नेह पर थी। स्नेही आत्मा को समान बनने में देरी नहीं है। स्नेही को कोई मेहनत ही नहीं है, लेकिन भगवान के साथ स्नेह जोड़ने में तीन प्रकार के स्नेह की स्टेज है। तीन प्रकार के, एक है प्यार, दूसरा है प्रेम, तीसरा है स्नेह। प्यार, प्रेम, स्नेह, तीनों में अंतर है या एक ही है? प्यार, प्रेम, स्नेह, इंग्लिश में तो एक ही शब्द है लव, लेकिन हिंदी में तो तीन शब्द है, प्यार, प्रेम, स्नेह। अंतर है कुछ? क्या अंतर है तीनों में? प्यार, प्रेम और स्नेह में, या तीनों एक ही है? पांडव क्या समझते, या कभी सोचा नहीं इसके बारे में? ऐसा शक्तियां, अच्छा, तीनों में अंतर है। प्यार, प्रेम, स्नेह, प्यार स्वतः हो जाता है, प्यार स्वतः हो जाता है, गुण, विशेषता, रूप, रंग, मदद, इसके आधार से प्यार स्वतः हो जाता है। किसी के सुंदर रूप को देखा, किसी की विशेषता को देखा, किसी की मदद की उसको देखा, तो प्यार स्वतः हो जाता है। प्रेम करना पड़ता है, प्यार स्वतः हो जाता है, प्रेम करना पड़ता है, और स्नेह निभाना पड़ता है। स्नेह निभाना पड़ता है, प्यार में स्वतः जो हो जाता है वो स्वतः टूटता भी जल्दी है, बहुत जल्दी टूटता है। प्रेम करना पड़ता है, प्रेम में ऐसा है कि आप जिससे प्रेम कर रहे हो जरूर कुछ अच्छाई लगी है, दिल को अच्छा लगा है, तब प्रेम करना शुरू किया है, लेकिन जब वो कुछ बातें कहता है जो आपसे नहीं हो पाती है, तब प्रेम में अंतर पड़ता है, तब अंतर पड़ना शुरू होता है। जैसे आपने पहले बाबा को समझा, भगवान मिला और भक्ति में गाते थे भगवान ही सब कुछ करता है, उसकी महानता को जानते ही थे, तो प्यार स्वतः हो गया था। वैसे भक्ति में भी था लेकिन यथार्थ नहीं था, अभी पहचान से प्यार हो गया। भगवान से प्यार करने में मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन दूसरी स्टेज है प्रेम, वो भगवान से जोड़ने में मेहनत पड़ रही। भगवान से सदा प्रेम रहे वो मुश्किल पड़ता है। तो प्रेम में क्या होता है, आत्मा चाहती है कुछ मैं करूं कुछ वो करे, कुछ मेरी मर्जी कुछ उसकी मर्जी। तो कई बार बाबा के पूरे श्रीमत पर नहीं चल पाते हैं तो कहते बाबा आप ऐसे करो ना, बाबा आप मदद दो ना, बाबा ये समस्या है ना, मतलब कुछ मैं मानूं कुछ आप मेरा कहना मानो। तो प्रेम करना पड़ता है, चलता नहीं करना पड़ता है। और स्नेह निभाना अर्थात स्नेह में कुर्बानी देनी पड़ती, कुर्बानी देनी पड़ती। स्नेह में अपनी मर्जी नहीं है, स्नेह में जो स्नेही को पसंद है वही मुझ आत्मा को करना है। अपना नहीं, जो स्नेही को पसंद है वो मुझे पसंद है। जो बाबा को पसंद है, जिस प्रकार से बाबा कह रहा है, जो कह रहा है, मुझे बहुत पसंद है, मुझे उसी पर ही चलना है। बाबा ऐसे करो नहीं, जो कहा मुझे पसंद है, उसमें चाहे प्राण का भी त्याग देना पड़े मुझे पसंद है। से बाबा प्राण लेगा नहीं, वो तो प्राण दान देने वाला है, लेकिन आंतरिक ऐसी भावना रहती है कि अगर ये शरीर भी चला जाए तो कुछ फर्क नहीं। तो स्नेह में कुर्बानी देनी पड़ती, ये है यथार्थ विधि का आधार। अगर यह आधार पक्का है तो फिर आप विधि पर चल सकते हैं। फिर जो भगवान ने विधि बताई है उस विधि पर आप तीव्र रूप से चल सकते हैं। अगर यह तीनों बातें पक्की नहीं हैं, तो जो भगवान ने विधि बताई है उस विधि को आप पूर्ण रूपेण फॉलो नहीं कर पाएंगे, कुछ करेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो विधि क्या है, यथार्थ विधि क्या है? अब यथार्थ विधि का अर्थ है कि भगवान कहता बच्चे निरंतर मुझे याद करो, ये भगवान का डायरेक्शन है कि निरंतर मुझ बाप को याद करो। अब निरंतर कैसे याद रहे उसकी जो विधि बताई है उस पर चलना, यथार्थ विधि हुई कि निरंतर बाप की याद किस प्रकार से रहे, उसके लिए जो बाबा ने विधि बताई है उस विधि प्रमाण स्वयं को चलाना। तो आप निरंतर याद की यात्रा में सबसे पहला है आंख खुलते ही आपका संकल्प। याद की यात्रा वहां से शुरू हुई, आंख खुली और सबसे पहले बाबा दिखाई पड़ा। सबसे पहले याद की यात्रा वहां से शुरू हुई। तो आंख खुलते ही याद की यात्रा शुरू हुई, और जो हम सुबह योग में बैठे वो योग हमारा यथार्थ लग गया। यथार्थ आत्मा ने पुरुषार्थ की स्पीड पकड़ ली। जिस विधि से बाबा ने सुबह योग के बारे में बताया उस विधि से आत्मा ने उस स्थिति को प्राप्त कर लिया, ये है योग की शुरुआत। क्योंकि अमृत बेला जैसा होगा, सारा दिन वैसे चलेगा। आधार है निरंतर योग का, आधार सबसे पहले अमृत बेला है। अगर आपका अमृत बेला योग अच्छा नहीं लगा, पावरफुल नहीं लगा, तो सारा दिन पावरफुल हो नहीं सकता है। अमृत बेले का बहुत बड़ा महत्व है, वो तो आप अनुभव भी करते होंगे। और बाबा मुरलियों में बताता है, 172 की मुरली में बाबा ने कहा था अमृत बेले के बारे में, योग के बारे में, कि जो बच्चा यहां से जितना देर से उठता है, जो योग का टाइम फिक्स है, उस टाइम से जो बच्चा जितनी देर से उठता है, वो उतनी देर से सतयुग में आएगा। अब अपने को देख लेना मैं कहां हूं। और जो बच्चा जितना घंटा लेट उठता है, उतना जन्म सतयुग में कम होगा उसका। और जो बच्चा जो टाइम फिक्स है योग का, उस समय उठता ही नहीं है, तो वो तो स्वप्न भी न देखे कि हम सतयुग में आएंगे भी। ये पाठ पक्का रखना। कौन सा समय है? 4 से 5, ये भगवान का फिक्स किया हुआ समय। ये समय को हल्का नहीं छोड़ना। एक तो कभी मिस नहीं करना और टाइम पर आना, लेट नहीं अपने को करना। अच्छा, हो सकता है इसमें हूं ऐसे कई महान बच्चे बाबा के, जिसका आज तक जब से ब्राह्मण जन्म लिया, चाहे 1 साल हुआ, चाहे 50 साल हुआ, चाहे कितना भी हुआ, तब से आज तक अमृत बेले का योग नहीं मिस हुआ हो, हाथ उठाओ। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बाबा के बच्चे अच्छे। ये तो आप लोगों का सतयुग के आदि में तो फिक्स है, 1-1-1 से आएंगे तो पक्की बात। लेकिन सुबह जितना योग में पावरफुल स्थिति का अनुभव करेंगे, आत्मा जितना स्वयं को सब गुणों शक्तियों से संपन्न अनुभव करेगी, उतना सर्व संपन्न के समय राज्य में आएंगे। अगर आज आप योग में थोड़ा अनुभव किया, कल बहुत अच्छा अनुभव किया, तो 1-1-1 में तो आएंगे, लेकिन ऊंच पद नहीं पाएंगे। ऊंच पद का आधार है आत्मा इस समय जितना सुबह योग में संपन्नता का अनुभव करेगी, उतना संपन्न स्वरूप का राज्य मिलेगा। अच्छा, जिन बाबा के बच्चों ने अभी तक कारणे अकारणे सुबह का योग मिस हो गया है। आज आप सब एक काम करना, क्लास के बाद या योग के बाद आप लोग बाबा के कमरे में जाना और बाबा के कमरे में बैठकर बाबा से प्रॉमिस करना, बाबा अभी तक जो बीत गया सो बीत गया, बाबा अब हम वायदा करते हैं कि आज से कभी भी अमृत बेले का योग मिस नहीं करेंगे, तो बाबा माफ कर देगा और नंबर 111 में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये पक्का कर लेना। बाबा के घर में आए हैं तो ये पक्का करके जाना। जब भगवान के बने हैं तो जरूर 111 में तो आए, क्योंकि 111 में भी 900,000 इकट्ठे होंगे, राजा प्रजा सब मिला करके। तो इस समय जितना आत्मा संपन्नता का अनुभव करेगी उतना तो संपन्न स्वरूप राज्य। और अगर इस समय आप जितनी प्राप्ति जैसी प्राप्ति वैसा पद, ठीक है। तो मुख्य है पहला अमृत बेला। अगर अमृत बेले आप लोगों को अनुभव होगा कि जिस दिन सुबह का योग अच्छा लग जाता है, अनुभव होगा सबको, उस दिन आप स्वयं अनुभव किया होगा कि अगर कोई छोटी मोटी बातें आती भी हैं तो मन को प्रभावित नहीं करती, अनुभव होगा। उस दिन मुरली सुनने में भी बड़ा मजा आता है, बहुत खुशी रहती है, अनुभव होगा। तो अगर सुबह का योग अच्छा है तो सारा दिन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इसमें सारा दिन अच्छा रहे उसकी विधि क्या है। जैसे बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया था कि आपने देखा होगा जब ट्रेन चलती है रेलगाड़ी तो देखा होगा उस समय इंजन को थोड़ी मेहनत लगती है, धीरे धीरे स्पीड लेती है, और जब ट्रेन स्पीड ले लेती है तो अगर इंजन चलना भी बंद कर दे तो काफी दूर तक ट्रेन स्पीड में चली जाएगी। ऐसे ही अगर आत्मा ने अमृत बेले पुरुषार्थ की स्पीड पकड़ ली, सुबह योग अच्छा लग गया, तो सारा दिन सुबह के आधार से चलता रहेगा। लेकिन ट्रेन फुल स्पीड पर है, लेकिन अगर डब्बा पटरी से उतर जाए तो स्पीड वाली ट्रेन वहीं रुक जाएगी, तो आपकी स्पीड तब चलेगी सारा दिन जब आप पटरियों पर रहेंगे, तब वो दोनों पटरी है, जैसे ट्रेन पटरी पर चलती है वो दोनों पटरी है, क्या कहेंगे, अनुभव से बताओ। अच्छा, वो दोनों पटरी है श्रीमत और मर्यादा, श्रीमत और मर्यादा। अगर श्रीमत के विपरीत संकल्प भी लाए तो क्या होगा? रिजल्ट जानते हो, रिजल्ट यही होगी जो सीता की हुई। श्रीमत से बाहर नहीं चलो। जिस प्रकार से बाबा ने देखने सुनने बोलने खाने जिस प्रकार से श्रीमत दी हुई है उस प्रकार से स्वयं को चलाओ। कर्म करते हुए कैसे कर्म योगी बनकर कर्म करे, कैसे ट्रस्टी बनकर कर्म करे, मतलब जो श्रीमत है उस आधार से चलाओ। श्रीमत में मन मत नहीं आने दो। और दूसरी है मर्यादा। मर्यादाओं की लकीर से बाहर नहीं जाओ। अगर मर्यादा की लकीर से बाहर गए तो सीता बाहर गई और रावण उठा ले गया। आप अगर मर्यादा की लकीर से बाहर गए तो रावण उठा ले जाएगा। रावण सबसे पहले किस रूप में बच्चों के ऊपर वार करता है? बुद्धि को भ्रमित करता है। सीता भी कोई रावण का अगर सहज रूप होता, सही रूप होता तो नहीं जाती है ना। उसका तो रूप दूसरा था, मतलब उस समय सीता की बुद्धि भ्रमित थी। भ्रमित होने के कारण सही रावण को नहीं पहचान पाई। तो सबसे पहले रावण हमारी बुद्धि को भ्रमित करने के लिए क्या प्रयोग करता है? सीताएं तो हम आप सभी है ना, क्या प्रयोग करता है? वहां भी सबसे पहले रावण ने सीता को भ्रमित करने के लिए राम के बारे में बहुत उल्टा पुल्टा बोला। उसको मार रहा है, वो चिल्ला रहा है, ऐसा है वैसा है। यहां भी यादगार तो अपना सबका है। सबसे बड़ा शस्त्र रावण का है व्यर्थ संकल्प। सबसे पहले व्यर्थ संकल्प आता है और व्यर्थ संकल्प आते ही क्या नुकसान होता है? जैसे लौकिक दुनिया में कोई किसी देश पर विजय प्राप्त करना होता है तो दो बात करता है, एक सप्लाई लाइन काट देता है, दूसरा कम्युनिकेशन की लाइन खत्म कर देता है। दो काम करता है। यहां भी रावण व्यर्थ संकल्प लाकर यही दो बात करता है। सबसे पहले सप्लाई लाइन खत्म हो जाती, अर्थात आत्मा को जो बाबा से शक्तियां मिलनी चाहिए, जो बुद्धि की दिव्यता रहनी चाहिए, वो व्यर्थ संकल्प लाकर खत्म कर देता है। सप्लाई लाइन ही खत्म कर देता है। और जब आत्मा की शक्ति ही खत्म हो गई तब तो सहज ही किसी के अंडर हो जाएगी। तो सहज ही चलते व्यर्थ संकल्प हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प विकार का रूप ले लेते। व्यर्थ संकल्प के बारे में तो बाबा ने बताया था कि व्यर्थ संकल्प एक बट के पौधे के समान, बट मतलब जो मरते हैं लोग ना जिसकी अर्थी बनाते, क्या बांस कहते हैं ना, वो उसके समान है। आप बांस के पेड़ को देखा होगा, एक पेड़ से दूसरा, दूसरे से तीसरा अपने आप ही निकलता है, लगाना नहीं पड़ता, निकलता जाता है। और जब ढेर सारा हो जाता है, सूख जाता है, तो हवा चलती है, वो आपस में ही रगड़ करके आग लग जाती, खुद भी जलता है, जंगल को जलाता है। तो व्यर्थ संकल्प ऐसे, व्यर्थ संकल्प एक आया और एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा फटाफट पैदा होते जाते, और धीरे धीरे व्यर्थ संकल्प चलते चलते विकार का रूप ले लेते, कोई ना कोई विकार का रूप ले लेते, खुद भी जलता है, दूसरों को भी जलाता है। तो व्यर्थ संकल्प सबसे पहले सप्लाई लाइन काट देता है, और दूसरी बात, बुद्धि की दिव्यता खत्म हो जाने के कारण, भगवान से कनेक्शन टूट जाने के कारण, भगवान का डायरेक्शन क्या है वो भी उस समय भूल जाता है और माया के बस हो जाते हैं, फिर रावण उठा ले जाता है। तो यह दो पटरियों पर सारा दिन स्वयं को चलाओ, श्रीमत और मर्यादा। फिर आपकी याद की यात्रा जो सुबह अनुभव किया है वो सारा दिन उसी रूप से चलती रहेगी। लेकिन सुबह, अच्छा टाइम तो हो गया है, अच्छा दो मिनट और लेते हैं, लेकिन सुबह आपका योग अच्छा लगे, पावरफुल लग जाए, उसकी विधि है आपका पहला संकल्प। अगर आपका आंख खुलते ही पहला संकल्प श्रेष्ठ और समर्थ आ जाए, तो योग में सब संकल्प समर्थ आ जाएंगे। पहले संकल्प का बड़ा गहरा महत्व। तो आपका पहला संकल्प समर्थ आना चाहिए, क्या कि आंख खुलते ही सबसे पहला संकल्प आना चाहिए, बाप दादा गुड मॉर्निंग। सिर्फ शिव बाबा नहीं, बाप दादा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोनों से करना है। लेकिन आंख खुलते ही दोनों से गुड मॉर्निंग हो जाए उसकी विधि क्या है? कई बच्चे करते भी होंगे, लेकिन मुझ आत्मा की गुड मॉर्निंग भगवान तक पहुंची भी या हमने कर लिया पूरा हो गया? अगर हमारी गुड मॉर्निंग भगवान तक पहुंचती है कि पहले संकल्प में दोनों से गुड मॉर्निंग हो जाए, उसकी विधि क्या है? क्योंकि अगर शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करो तो टोटल अशरीरी बनना पड़ेगा, अगर ब्रह्मा बाबा से गुड मॉर्निंग करो तो आकारी बनना पड़ेगा। बिना आकारी निराकारी बने बिगर गुड मॉर्निंग आपकी पहुंचेगी नहीं। गुड मॉर्निंग पहुंचने की निशानी है कि पहले ही संकल्प में खुशी और शक्ति की अनुभूति होगी, जितना शरीर से डिटैच हो गए उतना बाबा से जुड़ जाएंगे और अनुभूति होगी। तो किस विधि से दोनों से गुड मॉर्निंग करो, कल से ये अभ्यास करना। आंख खुलते ही सबसे पहला संकल्प लाओ, जो बाबा ने एक एग्जाम्पल देकर सुनाया था कि आंख खुलते ही संकल्प लाओ कि जैसे सतयुग में ब्रह्म लोक से आत्माएं उतरकर शरीर धारण कर देव आत्मा कहलाती हैं, वैसे ही संकल्प लाओ कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हो ब्राह्मण आत्मा बन बाप दादा से मिलन मनाने जा रही हूं। अच्छा मीठे बाप दादा गुड मॉर्निंग, इस विधि से करो। मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हो ब्राह्मण आत्मा बन बाप दादा से मिलन मनाने जा रही हूं। अच्छा मीठे बाप दादा गुड मॉर्निंग, आत्मा के नाते शिव बाबा से गुड मॉर्निंग हो जाएगी और ब्राह्मण के नाते ब्रह्मा बाप से गुड मॉर्निंग हो जाएगी, मात पिता दोनों से गुड मॉर्निंग हो जाएगी और दोनों का वरदान आशीर्वाद शक्तियां आत्मा को संपन्न बना देगी। अच्छा ओम शांति।
मीठी वाणी में Oh,